क्या आप जानते हैं कि आप परी कथा की कहानियों को एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन और कई अन्य पॉडकास्टिंग एप्स और वेबसाइटों पर सुन सकते हैं? अधिक जानने के लिए बालगाथा.com पर जाएं।
कल्लू की दुनिया, मंच पर खिलंदड़ी। खजूरिया गांव में रामलीला का बुखार चढ़ा था। यह कोई नई बात नहीं थी। जैसे कि कल्लू का कहना था, यह तो सालाना बुखार था। दशहरे से एक माह पहले बुखार की शुरुआत आम बात थी। जैसे सावन के गहराते बादल गायब होते और आसमान चकाचौंध करने वाले नीले रंग में रंग जाता, त्योहारों की भीनी गंध हवा में छाने लगती। यही संकेत था कि सबकी बातों में मास्टर जी और रामलीला का जिक्र शुरू हो जाता। गांव में हर जगह धर्मपाल की चाय की दुकान में, सब्जी के खेतों की निराई के समय, परचूनी की दुकान में, मोती दादी के आंगन में और कुएं की जगत पर सबकी जुबान पर एक ही सवाल होता, इस साल मास्टर जी क्या करने वाले हैं? कल्लू नतमस्तक होके कहता था,
मास्टर जी, निर्माता, निर्देशक, संवाद लेखक व संगीत निर्देशक हैं रामलीला के, और हम सब क्या देखेंगे, ये सिर्फ उन्हें ही पता है।
मास्टर जी गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे और उनकी खजूरिया रामलीला पार्टी हर साल बहुत ही बढ़िया खेल प्रस्तुत करती थी। अब पूरी रामायण करना तो उनके बूते के बाहर था, क्योंकि इतनी लंबी कथा में जितने पात्र थे उतने अभिनेता खजूरिया में कहां जुट पाते। पर मास्टर जी ने कुछ मुख्य घटनाओं के संवाद लिखे थे और उनमें से दशहरे से पहले हफ्ते में कुछ का मंचन होता था। खजूरिया में कौन से दृश्यों को देखने का आनंद मिलेगा, यह किसी को पता ही नहीं होता था। जिस मैदान में बदरी दूधिया की भैंसे बंधती थी, उसके कोने में शामियाना लगता था। वहीं जय भगवान टेंट हाउस की लरजती मेजों का मंच बनाया जाता था। दर्शक जमीन पर बिछी दरियों पर विराजते और गांव में बिजली आ जाने से मंच को गैस के हंडों व बिजली के बल्बों से रोशन किया जाता। पहले ही दिन से कल्लू और उसका दोस्त स्कूल की इमारत के आसपास मंडराता रहता। वहां खेल की तैयारी चल रही थी, शायद मास्टर जी उन्हें कुछ करने को दें। कल्लू के दल में उसकी बहन मुनिया और भाई शब्बो, उसका सबसे प्यारा दोस्त दामू व उसकी बहन सरू भी थे। हर दिन वे बैठकर खेल की तैयारी होते देखते और उन्हें ज्यादातर संवाद मुंह जुबानी याद हो गए थे। हर साल मास्टर जी सीता स्वयंवर का प्रसंग जरूर चुनते, जिसमें राम शिव का धनुष तोड़ते, कैकई और मंथरा की साजिश जिससे राम को बनवास दिया जाता और दशरथ रोते रोते प्राण तज देते, यह दृश्य भी जरूर लिया जाता। मुनिया को वह प्रसंग सबसे अच्छा लगता था जिसमें लक्ष्मण शूर्पनखा की नाक काटते और जब रावण सीता को हर लेता, हनुमान का लंका दहन और फिर सबसे रोमांचक युद्ध जिसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का राम, लक्ष्मण, हनुमान व वानर सेना से लड़ना होता। इस साल उनकी मिन्नतें रंग लाई थी और मास्टर जी ने कल्लू, दामू व शब्बो को वानर सेना में बंदरों की भूमिका दी थी। अंतिम युद्ध के दृश्य में उन्हें अभिनय का मौका मिला था। नेकर पहन के बंदरों की मुख सज्जा और लंबी पूंछे लगाने का मौका मिला था। तीन की गदाएं व तलवारें भांजने में आहा कैसा मजा आता था। मुनिया और सरू तो जल भुन के राख हो गई थी।
कितनी बेकार की बात है।
सरू ने एक दिन सुबह स्कूल जाते हुए गंभीर मुद्रा में कहा था,
लड़कियां रामलीला में अब क्यों अभिनय नहीं कर सकती? रात सीता को देखा था।
मुनिया पूछ बैठी,
कल्लू भैया की कक्षा में पढ़ता है वह लड़का, और मूंछ भी दिखने लगी है और उसकी आवाज भी बार बार फट रही थी।
सरू की तो हंसी ही छूट गई।
मुझे तो लगता है कि बिल्लो चाची कितनी अच्छी सीता बनती है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर उनके पति धर्म चाचा राम बन सकते हैं तो वे सीता क्यों नहीं बन सकती। उन्होंने तो मास्टर जी से कहा भी, पर वे बोले कि खजूरिया पंचायत रामलीला ही बंद करवा देगी अगर उन्होंने वास्तव में औरतों से अभिनय करवाया। धत।
सरू ने मुंह बना के सिर हिलाया।
खैर, आज रात तो बद्री भैया का बोल बाला है।
मुनिया खुशी से उछली,
हाय शाम जल्दी क्यों नहीं होती।
कल्लू और उसके दल के अनुसार तो शो का सितारा, सबसे बेहतरीन अभिनेता था बद्री। थोड़ा खिसका हुआ भैंसों का मालिक जो हमेशा हनुमान बनता था,
नाटा, मोटा,
उलझे बालों वाला, बड़ा सर, बड़ी सी मूंछ, बड़ी बड़ी गोल आंखें और दिल दहलाने वाली आवाज। ऐसे थे बद्री भैया। जब बद्री मंच पर होता और चिल्ला के अपने संवाद बोलता हुआ चक्कर लगाता तो राम और लक्ष्मण भी फीके पड़ जाते। जिस दृश्य में हनुमान रावण के साथ सवाल जवाब करके लंका को जला देता था, उसे देख कल्लू और उसके दोस्त बिल्कुल दीवाने बन जाते। क्या दृश्य था, वाह, बिल्कुल सुपरहिट। मास्टर जी की कलम से ऐसे ऐसे चुटीले संवाद निकल के आए थे कि जब रावण और हनुमान का वार्तालाप होता तो दर्शक बिल्कुल दम साधे बैठे रहते कि एक शब्द भी कहीं छूट न जाए। उस शाम कल्लू और उसके दोस्त सबसे पहले तंबू पर आ पहुंचे थे। बद्री की भैंसे पास में बंधी थी और दामू के शब्दों में उन्हें गोबर के पहाड़ों के ऊपर से हाई जंप लगा के आना पड़ता था। सामने से दूसरी और ठीक बीचों बीच कितनी अच्छी जगह मिली है बैठने को। शब्बो दरी पर विराजता हुआ खुशी मना रहा था। मुनिया और सरू को चिढ़ाने की गरज से कल्लू ने मुस्कुरा के कहा,
कल तो हमें बैठने की जगह चाहिए ही नहीं, हम लड़के तो कल मंच पर होंगे।
मुनिया ने घुंघराले बाल झटक के कहा,
हाँ हाँ, बेवकूफों की तरह इधर उधर कूदते हो और तुम में से किसी को एक लाइन भी बोलनी नहीं आती। हाँ। और शप्पो को तो मेघनाद मार देगा और फिर उसे तो लड़की के लट्टू की तरह सिर्फ पड़े रहना है। हाँ।
सरू ने खिल्ली उड़ाई।
कुछ पता भी है कि मरा दिखने के लिए सचमुच अभिनय करना पड़ता है,
शब्बू ने गुस्से में कहा।
बहुत धीमे धीमे सांस लेनी पड़ती है और आंखें कस के बंद।
खजूरिया के सबसे अच्छे मृत वानर का खिताब तुम्हें ही मिलेगा,
दामू ने भी चुहल करी। जैसे सूरज ढला तम्बू में भीड़ बढ़ गई। मंच के पीछे मामला गरमाने लगा। सब अपनी पोशाकें पहनने व अपनी साज सज्जा में मशगूल थे। धर्मपाल की आज छुट्टी थी क्योंकि आज के दृश्य में राम नहीं थे, इसलिए वह बद्री के मुंह पर हनुमान का मेकअप लगा रहा था।
आ बद्री, मेरी मानो तू मूछ मुंडवा लो भैया,
धर्मपाल बोला।
बड़ी अजीब लगती है, फिल्मों में और टीवी पर हनुमान हमेशा मूछ के बगैर ही होते हैं।
भूरी रंग दो तो किसी को पता भी नहीं चलेगा,
बद्री हुकारा। किसी भी हालत में नहीं मुड़वाऊंगा, कभी नहीं। फिर उसने आंखें तिरछी करके संवाद के पन्नों को पढ़ने की कोशिश की।
ये मास्टर जी हर साल संवाद बदलते क्यों रहते हैं? ओहो,
वह भुनभुनाया।
वे कलाकार हैं और सभी कलाकार थोड़े खिसके हुए होते हैं। इस साल भरत मिलाप के दृश्य में वे चाहते थे कि राम और भरत गाना गाए। बोलो,
धर्मपाल बोला।
गाना?
बद्री चौंका।
हाँ, कुछ ऐसा था, भाई भाई का प्यार अमर रहे, कुछ 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 पता नहीं,
धर्मपाल बोला।
पर तुम तो गा नहीं सकते,
बद्री ने कहा।
अरे वही तो, और ना लट्टू गा सकता है जो भरत बना हुआ है। दो दिन तक कोशिश करने के बाद माने मास्टर जी कि हम गा नहीं सकते। शुक्र है, शुक्र है,
धर्मपाल बोला। अचानक बद्री उठ बैठा और पूरे जोर से चिल्लाया,
मास्टर जी, मास्टर जी, धर्मपाल के हाथ से रंग छूट पड़ा।
क्या हुआ?
मास्टर जी घबराए हुए दौड़े आए।
आपने राम के लिए गाना लिखा और हनुमान के लिए नहीं, जबकि मैं गा सकता हूँ,
बद्री बोला।
अरे बद्री,
मास्टर जी ने मुंह में पान की गिलौरी ठूसी।
हनुमान नहीं गाते।
और तुम गाओगे भी क्या?
धर्मपाल ने बद्री की नाक पर सुर्ख लाल रंग ध्यान से लगाया।
हनुमान रावण की दुश्मनी अमर है और अमर ही रहे।
हाँ हाँ हा।
मास्टर जी हंसते हुए पान की पीक के फव्वारे छोड़ते आगे बढ़ गए। धर्मपाल ने बद्री के चटक पीले नेकर पर पूंछ लगाई। बद्री हनुमान के भूरे पुते चेहरे पर क्या भाव खेल रहे थे इस पर किसी की भी नजर नहीं पड़ी। एक घंटे बाद पर्दा उठा तो लंका में रावण का राज दरबार जय भगवान टेंट हाउस के राज सिंहासनों, कालीनों व पर्दों से सजा हुआ सबकी आंखें चुंधियाने लगा। जय भगवान कुंभकर्ण की भूमिका अदा कर रहा था क्योंकि वह गांव का सबसे मोटा आदमी था। दृश्य बहुत ही अच्छा चल रहा था और दर्शक पूरी तल्लीनता से घटना चक्र में रमे हुए थे। छोटे लाल गांव का पहलवान रावण बना था और मंदोदरी की भूमिका नारायण निभा रहा था। नारायण 10वीं कक्षा में पढ़ता था और गुलाबी सुनहरी जरी की साड़ी में खूब फब रहा था। अपनी मछली सी मांसपेशियों, घनी भवों, घुमावदार मूछ, बड़ी आंखों के कारण रावण सच में डरावना लग रहा था। बस एक समस्या थी, वह भी छोटी सी। छोटे लाल को संवाद याद नहीं रहते थे।
छोटे लाल को उसकी पंक्तियां याद कराने में मास्टर जी के नाकों चने चब गए।
दामू दबी जबान से बोला,
सब कुछ घाल मेल कर देता है।
फिर मास्टर जी को एक तरकीब सूझी। कल्लू मुस्कुराया, क्या? सभी ने मुड़ के कल्लू से पूछा, नारायण के होंठ देखो, छोटे को सब बता रहा है।
मास्टर जी ने उसे मंदोदरी और रावण दोनों की पंक्तियां याद करवाई।
कल्लू फुसफुसाया,
वाह गजब।
मुनिया ने चुपचाप मास्टर जी का लोहा माना।
आ गया,
सरू रोमांचित होके मचल रही थी। हनुमान को कुछ राक्षस घसीटते हुए मंच पर लाए। सारे दर्शक आगे झुके, सबकी आंखें हनुमान पर टिकी थी। मोटी मोटी रस्सियों से बंधा हनुमान तन के खड़ा गुस्से से रावण को घूर रहा था।
कौन है ये?
मंदोदरी ने छोटे को फुसफुसाया। हाँ? रावण ने उसकी तरफ सर किया, सुना और फिर जोर से कहा,
कौन है ये?
एक राक्षस एक कदम आगे आया।
महाराज, अशोकवन से पकड़ के लाया हूँ। देवी सीता से क्या बात कर रहा था?
क्या?
मंदोदरी फुसफुसाई।
क्या?
रावण चिल्लाया और अचानक से उसे सारी पंक्तियां याद हो आई।
वहां कैसे घुसा? क्या कर रहा था?
गुस्से से उसने अपनी भुजाएं हिलाई। मुनिया धीमे से हंसी और फिर जैसे जैसे और लोगों ने रावण का चेहरा देखा वे भी हंसने लगे। जब रावण अपनी भुजाएं हिला रहा था उसकी नकली मूंछ का एक हिस्सा उसके गाल पर से छूटकर उसके होठों पर काले केंचुए सा लटक आया था। जहां कल्लू बैठा था वहां से उसे दिख रहा था कि मास्टर जी पूरे जोर से हाथ हिला के अपने चेहरे की तरफ इशारा कर रहे थे। अपनी पंक्तियां कहने को तैयार हनुमान ने हैरानी से दर्शकों को देखा। यह तो गंभीर दृश्य था। फिर किस वजह से हंसी आ रही थी इन्हें?
अरे क्या हुआ?
उसने अंधेरे में आंखें गड़ा के पूछा,
हंस क्यों रहे हो?
रावण की मूंछ गिर रही है बद्री भैया।
किसी ने पीछे से सूचना देके हनुमान की उलझन सुलझाई।
ओह सॉरी,
रावण घबरा के उछला और अपनी मूंछ वापस चिपकाई। फिर पसीने से तर चेहरा मंदोदरी की तरफ करके उसने पूछा,
आगे क्या कहना है?
घबराहट में फुसफुसाना भूल गया और सब फिर हंसने लगे।
नेपथ्य में मास्टर जी की पान चबाने की गति और तेज होती गई।
बोलो कौन हो तुम चोर वानर?
मंदोदरी फुसफुसाई।
क्या?
रावण अभी भी संयंत नहीं हुआ था।
ठीक, बोलो कौन हो तुम चोर वानर?
और आखिरकार वह हनुमान की तरफ घूम के बोला,
कहां से आए हो?
अब आई। शब्बो उत्सुकता से आगे की ओर झुका। मेरी सबसे मनपसंद लाइन। मास्टर जी ने कुछ महत्वपूर्ण संवाद कविता में लिखे थे और जहां हनुमान रावण को अपना परिचय देते हैं, ऐसी अच्छी कविता तो शब्बो ने कभी सुनी ही नहीं थी। और बद्री का अभिनय तो बस लाजवाब था। वह पूरी तरह तन के खड़ा होता था और अपनी छाती ठोक के गुस्से में पूछता,
चोर वानर कौन हो मुझे ऐसा कहने वाले? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं?
फिर दर्शकों से मुखातिब होके वह कविता कहता जो शब्बों को जबानी याद थी।
मैं हूं राम जी का चेला, मैं हूं हनुमान अलबेला, तू है रावण बलवान, कर दूं तुझको परेशान।
एक नाटकीय ठहराव के बाद फिर से अपना सीना ठोक के पूरी ताकत से कहता,
मैं हूं पवन पुत्र हनुमान।
जैसे दर्शक दम साधे इंतजार कर रहे थे, हनुमान ने रावण को घूरा और चिल्लाया,
तुम्हें पता है मैं कौन हूं?
दर्शकों की तरफ घूम के गला खखार के साफ किया और अचानक से बद्री ने गाना शुरू कर दिया,
मैं हूँ राम जी का चेला, मैं हूँ राम जी का चेला।
अरे ये तो गा रहे हैं।
सरू की आंखें फैल गई,
मैं हूँ हनुमान अलबेला, मैं हूँ हनुमान अलबेला।
हनुमान का गाना जारी था।
वाह अच्छा गा रहा है,
कल्लू खुशी से उछल पड़ा। बद्री भैया तो सच में गा सकते हैं। मंच की बगल में मास्टर जी बिल्कुल स्तब्ध खड़े थे, मानो उन पर गाज गिरी हो। उनकी राम लीला का चमकता सितारा बद्री दिल खोल के गा रहा था और मास्टर जी जीवन में पहली बार पान चबाना ही भूल गए।
बद्री गाता रहा, एक हाथ उठाए जैसे फिल्म का हीरो हो। उसकी आंखें छत पर टिकी थी, उसकी धुन में आकर्षक लय थी और दर्शक उसके साथ ताली देने लगे। एक राक्षस लय के साथ मटकने लगा। बद्री मुस्कुराने लगा और मस्ती से सर हिला के उसने पूरा गाना फिर से गाना शुरू कर दिया। आखिरी पंक्ति पर
पहुंचकर उसने हाथ से दर्शकों को साथ देने का इशारा किया और फिर गाया,
मैं हूँ पवन पुत्र,
और गला फाड़ हनुमान। दर्शकों ने दिल खोल के जोड़ा। बाहर मैदान से बद्री की वफादार भैंसों ने कोरस में अपना सुर लगाया,
मा, मा।
जब थके हुए प्रसन्न बच्चे घर की तरफ चले, कल्लू ने संतोष की गहरी सांस भर के कहा, वाह, क्या सुपर हिट रामलीला थी।
परी कथा की इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। क्या आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया? यदि ऐसा है तो हम आपकी प्रतिक्रिया या फीडबैक सुनना पसंद करेंगे। ऐसी कई कहानियाँ आप सुन सकते हैं mlftpodcast.in पर जाकर। इस कहानी का निर्माण गाथा स्टोरी ने किया है।